नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जनगणना 2027 पहली अप्रैल से शुरू होगी। पहले चरण में घर घर की सूची बनाने के साथ नागरिकों द्वारा स्वयं गणना की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1,22,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के खातों में 12,20,00,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कल 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी करेगा। और प्रदेश के कई इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से अंधड़ और बारिश। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। जनगणना 2027 पहली अप्रैल से शुरू होगी। ये आजादी के बाद की 8वीं और इस श्रृंखला की 16वीं जनगणना होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में महापंजीयक और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने बताया कि जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। श्री नारायण ने कहा कि पहले चरण में घर घर की सूची बनाने के साथ नागरिकों द्वारा स्वयं की गणना की जाएगी।
जनगणना की तैयारियां अब अग्रिम अवस्थाएं पहुंच चुकी है और अब से कुछ एक दिन में ही फील्ड का कार्य प्रथम चरण प्रारंभ होने जा रहा है। जनगणना एक बृहद कार्य है। इसमें केंद्रीय स्तर पे और राज्यों के स्तर पे, संघ शासित प्रदेशों के स्तर पे विशद तैयारी चलती है। यह जनगणना 2 चरणों में सम्पन्न होती है और इस बार आंकड़ों का संग्रह डिजिटल माध्यम से किया जाना है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में 1,22,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को डीबीटी के माध्यम से 12,20,00,000 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की। प्रत्येक कार्यकर्ता और सहायिका को 1,000 रुपए के 2 यूनिफॉर्म दिए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों की वार्षिक गतिविधियों के कैलेंडर का विमोचन भी किया। श्री शर्मा ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना और कालीबाई भील योजना के लाभार्थियों को चेक भी सौंपे। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के काम की सराहना करते हुए कहा कि वे बच्चों के भविष्य के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं।
हमारे उन नौनिहाल बच्चों को किस तरह से वो खुश रखती हैं, उनको शिक्षा भी देती हैं, दिशा भी देती हैं, उनकी नींव को भी मजबूत करती हैं। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि एक साथ आप सभी बहनों के दर्शन का लाभ मुझे हुआ है।
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और महिला तथा बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
आंगनबाड़ी केंद्र जो हमारे हैं, उनमें पहली बार जो जर्जर हमारी बिल्डिंग्स थी उनमें पहली बार पूरा पूर्ण रूप से उसका काम करवाना, उसमें कैसे हम लोग और क्या कर सकते हैं, बिजली के कनेक्शंस भी आप लोगों को इस बार दिलवाए हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में। अरे आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे होने चाहिए, बहुत आधुनिक रूप से बनने चाहिए, उनमें और क्या सुविधाएं हम लोग दे सकते हैं, उसके लिए रात दिन विभाग काम कर रहा है।
तेल विपणन कंपनियों ने राज्यों में वाणिज्यिक एलपीजी का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारी निदेशक स्तर पर 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण देश में आयातित एलपीजी की उपलब्धता प्रभावित हुई है। श्री गोपी ने कहा कि भारत अपनी एलपीजी खपत का लगभग 60% आयात करता है। इसमें से लगभग 90% हॉर्मुज जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एलपीजी आपूर्ति में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। श्री गोपी ने कहा कि सरकार ने राज्यों को वाणिज्यिक एलपीजी का आवंटन 20% और बढ़ाकर कुल आवंटन को संकट पूर्व स्तर के 70% तक पहुंचा दिया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना ECMS के अंतर्गत 61,000 करोड़ रुपए की कुल 75 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से लगभग 61,000 करोड़ रुपए का निवेश और देश में करीब 65,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE की 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम कल जारी किया जाएगा। सीनियर सेकेंडरी के कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकायों के नतीजे कल सुबह 10 बजे जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अजमेर स्थित बोर्ड कार्यालय से ये परिणाम जारी करेंगे। राज्य में नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसके लिए प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में प्रवेशोत्सव आयोजित किया जा रहा है। स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की टीमें घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। ये सघन अभियान 27 मार्च को चलाया गया था, अब 6, 10 और 15 अप्रैल को भी ये अभियान चलाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस बार सत्र के पहले दिन से ही पढ़ाई शुरू करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 1 अप्रैल तक सभी स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए हैं। इंदिरा गांधी नहर में आंशिक बंदी शुरू हो गई है। ये नहर बंदी 10 अप्रैल तक चलेगी। इस दौरान पंजाब के सरहिंद फीडर से पीने का 1500 से 2000 क्यूसेक पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके बाद 11 अप्रैल से 10 मई तक 30 दिनों के लिए नहर की पूर्ण बंदी रहेगी। अधिकारियों ने आम जन से पानी की हर बूंद का सदुपयोग करने की अपील की है, जिससे अगले 1.5 महीने तक जलापूर्ति सुचारू बनी रहे। भगवान महावीर के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज प्रदेश भर में अनेक आयोजन हो रहे हैं। भगवान महावीर के सत्य, अहिंसा, जियो और जीने दो का संदेश जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इस मौके पर नवकार महामंत्र का जाप किया जा रहा है और शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। अजमेर में पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से आकर्षक झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं रणकपुर और श्री महावीर जी में भी इस मौके पर बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी जुटे हैं। सलूंबर में निकाली गई रथ यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। और अब मौसम। राज्य के कई इलाकों में आज तेज हवाओं और अंधड़ के साथ बारिश हुई। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 15 से ज्यादा जिलों में बादल छाए रहे। सवाई माधोपुर में दोपहर बाद आसमान में बादल छाने से मौसम खुशनुमा हो गया। दीग और जैसलमेर में तेज अंधड़ के साथ बूंदाबांदी हुई। कोटा जिले में सुबह से ही बादल छाए रहे और दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं ओले भी गिरे। हनुमानगढ़ में भी काले बादलों की गर्जना के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश के समाचार हैं। भीलवाड़ा में भी दोपहर बाद कई इलाकों में छींटे गिरे। मौसम केंद्र जयपुर ने आज भरतपुर, कोटा, बूंदी, बारां जिलों में बिजली गिरने और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा आज जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में तेज मेघ गर्जन, आंधी और कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कल भी शेखावाटी इलाके, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब खेती के कचरे से सड़क बनाने वाला डामर यानी कि बायो बिटुमिन तैयार किया जाएगा। वे आज नई दिल्ली में इस नई तकनीक से जुड़े एक समझौते के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि फसल कटने के बाद बचे हुए अवशेषों का इस्तेमाल किए जाने से किसानों को अतिरिक्त कमाई होगी।
एक एक बूंद का हम ढंग से और सही उपयोग कैसे करें ताकि जो ड्राई लैंड वाले हमारे किसान हैं, उनकी जो हमारी खेती है वो अच्छा उत्पादन दे सके, उस प्रश्न को कर सके। हमने सॉयल हेल्थ कार्ड बना के उसमें भी किन किन तत्वों की कमी है ड्राई लैंड में भी उसके हिसाब से जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है उतना ही केवल संतुलित उपयोग खाद का करें।
इस अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत अपनी जरूरत का आधा डामर विदेशों से मंगवाता है। इस नई तकनीक के आने से अब डामर देश में तैयार किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री अवधिवार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 कल समाप्त हो रही है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक ऋणी सदस्य कल तक अपने जिले के सहकारी भूमि विकास बैंक में संपर्क कर सकते हैं। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रबंध निदेशक जितेंद्र प्रसाद ने बताया कि योजना में बकाया शत प्रतिशत अवधिपार ब्याज और दंडनीय ब्याज की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में राज्य के बीमा और प्रावधाय निधि विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान वंदे मातरम पर हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन विशेष रहा। विभागाध्यक्ष हेम पुष्पा शर्मा ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। राज्य सरकार प्रदेश में टाइप 1 डायबिटीज और सिकल सेल एनीमिया के इलाज को और बेहतर बनाएगी। मुख्य सचिव बी श्रीनिवास की अध्यक्षता में आज जयपुर में हुई बैठक में इस बारे में चर्चा की गई। इस बैठक में पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और निजी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्य सचिव ने टाइप 1 डायबिटीज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने और बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा प्रतापगढ़ जैसे आदिवासी जिलों में सिकल सेल एनीमिया कार्यक्रमों को मजबूत करने के निर्देश दिए। बैठक में मिशन मधुहारी को पीपीपी मॉडल के जरिए और प्रभावी बनाने पर भी विचार विमर्श किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनगणना 2027 पहली अप्रैल से शुरू होगी। पहले चरण में घर घर की सूची बनाने के साथ नागरिकों द्वारा स्वयं गणना की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1,22,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के खातों में 12,20,00,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कल 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी करेगा। और प्रदेश के कई इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से अंधड़ और बारिश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।